सर्वं कालं कृतं मन्ये
सर्वं कालं कृतं मन्ये
भवतां च यत् प्रियम्
भवतां च यत् प्रियम्
सपालो यद् वशे लोके
सपालो यद् वशे लोके
वायोरिव गणावली
वायोरिव गणावली
भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, मेरे पीछे द्वारा ये तात्पर्य। इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है, बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित हैं जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाया जाता है। इसी प्रकार परिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतः प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है। जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है, अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है, तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता, लेकिन पुण्यात्मा बड़े बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होते हैं। इन तीन पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल से वश में अतएव पालन होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। सर्व काल कृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं सपालो यत् वशे लोके वायुर इव गणावली। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते, तो यहाँ भगवान की शक्ति काल का वर्णन किया गया है। काल ये भगवान की शक्ति है, अर्थात काल के मुताबिक जो नियत है वो होता रहता है, और ये भगवान की व्यवस्था है, और इन व्यवस्था को हमें आत्मसात करना चाहिए। काल सतत बहता रहता है, सतत होता रहता है, और कालांतरे सब कुछ यथायोग्य परिवर्तित होता रहता है। काल कर्म माया इन तीनों का जीव को बंधन होता है। काल कर्म और माया, माया का बंधन, काल का बंधन और कर्म का बंधन, तो तीन जीव को बाध्य करता है, इसलिए भक्त को चाहिए कि इन तीनों से परे हो। तो भक्त अपनी शुद्ध भक्ति से इन तीनों से परे हो जाता है। तो जब तक काल की बात आती है, काल की गिनती ब्रह्मा की आयु के मुताबिक ये भौतिक संसार में होती है। शास्त्र युग पर्यंतम अरहत ब्रह्मनो विदु। ब्रह्मा जी का एक दिन सहस्त्र महायुग से बनता है। युग महायुग का अर्थ है चार युग की चौकड़ी, चार युग साथ में मिला के एक महायुग बनता है। कली द्वापर त्रेता सत्य, ये चार युग हैं और चारों का 432,000 कलयुग, उनसे दुगुना द्वापर, उनसे तीन गुना त्रेता, इनसे तीन चार गुना सत्युग, तो 17 लाख सम वर्ष से ये महायुग बनता है। तो इसे महायुग हजार सहस्त्र युग पर्यंतम अरहद ब्रह्मनो विदु, ब्रह्मा का एक दिन बनता है। और ऐसे ब्रह्मा की रात्रि सहस्त्र युग की, और ऐसे ही तो अरहद ब्रह्मनो विदु, तो ये रात्रि और ब्रह्मा का दिन वैसा एक दिन रात्रि दिन बन गए। वैसा उनका 365 डेज दिन से एक साल बनता है, और वैसा 100 साल ब्रह्मा की आयु। तो ये काल की गिनती है। और पल और लव ये सूक्ष्म गिनती है, लेस देन मिनट। तो ये काल की गिनती है, और एक काल के मुताबिक काल का बहना, काल चलता रहता है। काल की गिनती हम सूर्य की गति से भी करते हैं, यक्षुरेशा सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति रशेषतेषा, यस्य आज्ञाय भ्रमति समृद्ध काल चक्रो यसी आज्ञाय कृष्ण गोविंद महादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद श्री कृष्ण की आज्ञा से सूर्य सविता जो सकल ग्रहणम राजा सकल सब ग्रहों का राजा सूर्य है, और सूर्य श्री कृष्ण की मर्जी मुताबिक वो चक्र काल चक्र काल बनाता है। सूर्य का एक चक्र एक दिन, सूर्य का दूसरा चक्र रात, वैसे दिन रात बनती एक चक्र से सूर्य के। तो ये सविता सकल ग्रहण नाम राजा समस्त सूर्यमूर्ति रशेष यस्य आज्ञाय भ्रमति समृद्ध काल चक्र। तो ऐसे काल की गिनती मतलब काल बहता रहता है, कोई काल असीम है, काल की कोई सीमा नहीं है, काल हमेशा बहता रहता है, रुकता नहीं। और एक काल की गिनती के लिए सविता या ब्रह्मा लव मात्र ये काल की गिनती के साधन है। तो भगवान के भक्तों के लिए भागवत में कहा गया है कि सविता काल सब कुछ भक्तों के लिए उनका कोई असर नहीं, भक्तों पर उनका कोई असर नहीं होता। तो मैंने कल परसों बताया था जो श्लोक, दूसरा स्कंद 3rd chapter 17th verse आयु हरति वैपुंसाम उद्यान अस्तांचन असव तस्यार्थे यतक्षणो नित्त उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक कृष्ण की वार्ता कथा नाम रुचि नामे रुचि जो भगवान की भक्ति में हमेशा प्रवृत्त रहता है उनका सूर्य काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि भक्त हमेशा भक्ति में स्थित शुद्ध भक्ति में शुद्ध भक्त हमेशा स्थित होता है। भक्ति से कभी भी वो च्युत नहीं होता, गिरता नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना में वो स्थित रहता है, इसलिए उनके लिए सुख दुख ठंडी गर्मी उनको आता जाता है फिर भी असर नहीं करता, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर रहता है। जैसे धोखा, धोखा का अर्थ है कपड़े धोने वाला धोखा, तो धोखा यहाँ भी कपड़े धोएगा झिकेगा और स्वर्ग में जाएगा, धोखा स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में भी धोखा वही करता रहा, कपड़े धोता रहा। तो उसी तरह भक्त जहां भी है वो भक्त शुद्ध भक्ति में समेश के लिए स्थित हो गया है, इसलिए उनका एक ही कार्य है शुद्ध भक्ति और उनमें स्थित। और जो काल और काल के बंधन, काल के काल का असर, काल का जो भी है वो आता जाता रहता है लेकिन भक्त उनको नोटिस नहीं करता। जैसे कोई कामांध है तो जब काम के पीछे भागता है तो उनको और कुछ नहीं दिखाई देता, जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेविटी। उसी तरह भक्त जो है भक्ति में हमेशा निरंतर स्थित रहता है, तो उनके लिए काम उनके लिए काल कुछ असर नहीं कर सकता। काल आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन भक्त उनसे डिस्टर्ब नहीं होता। तो ये है उत्तम श्लोक वार्ता, तस्यार्थ यत क्षणो नित्य उत्तम श्लोक वार्ता। जो उत्तम श्लोक की वार्ता कथा कीर्तन नाम रूप लीला गुण धाम में जो रत रहता है वो वही करता रहेगा, और वो चीज करने पर उन चीजों की खासियत है उन नीचे उन भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप लीला गुण धाम उनका गुण धर्म है कि जो भी उनमें प्रवृत्त रहेगा उनको दिव्य स्तर पर हमेशा रखेगा। दिव्य स्तर है जहाँ काल नहीं है, आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, भौतिक जगत में काल है। आध्यात्मिक जगत ये सनातन जगत है। न तद भासयते सूर्यो न शशांक न पावक तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान के धाम में न सूर्य है न चंद्र है, और वो सूर्य चंद्र काल के प्रतीक है। काल यस्य आज्ञाय भ्रमति काल चक्रो, तो ये सूर्य और चंद्र है नहीं और वो सनातन धाम है, इसलिए वहाँ काल की कोई असर नहीं है। अगर है तो वो आनंद प्रमोद के लिए है। वहाँ रात्रि भी हो तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास के लिए, अगर चंद्र भी हो तो शरद पूर्णिमा का चंद्र शीतलता प्रदान करता हुआ भगवान को और भगवान के भक्त भक्तिन को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, दिव्य सुख आनंद देने के लिए। सूर्य चंद्र वहाँ आध्यात्मिक जगत में हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ हो सकता है लेकिन उनका प्रभाव दिव्य होता है। जो भौतिक जगत में है वो सब चीज आध्यात्मिक जगत में है लेकिन उनका प्रभाव दिव्य है। काम का यहाँ काम है तो तो वही काम दिव्य जगत में
प्रेम है
तो उनका जो और दिव्य प्रेम, यहाँ का लस्ती प्रेम नहीं, कामी प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम। तो यहाँ कुछ भी अगर यहाँ बर्फ है ठंडी है, लेकिन वहां बर्फ होगी तो ठंडी नहीं होगी, तो बर्फीली पहाड़ियां तो राइट टेम्परेचर देगी। तो वैसे काल वहां है, तो काल अगर है आध्यात्मिक जगत में तो वो काल बंधन में नहीं डाल सकता। भौतिक जगत में काल बंधन में डालता है, काल के मुताबिक जीव बंधन में आता है। मृत्यु सर्वहरामि हम, जब मृत्यु काल आता है तो जाना पड़ेगा, समय आएगा तो जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान के भक्त को नहीं जाना है। भगवान का भक्त समझता है कि मुझे एक कुर्सी पर उठ के दूसरी कुर्सी पर बैठना है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि मृत्यु काल जैसे जीव एक हृदय से निकल के दूसरे हृदय में बैठता है, तो वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि एक कुर्सी पर से उठ के दूसरी कुर्सी पर हम बैठे, तो वो प्रक्रिया मृत्यु और जन्म की है भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त सनातन काल में स्थित है। सनातन काल उनके लिए कोई काल कर्म कर्माणि निर्धारति, कर्म का भी बंधन नहीं है, काल का भी बंधन नहीं है, कर्माणि निर्धारति। किंतु जो भक्ति बाजा अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् वगैरह, योगक्षेमं वहाम्यहं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। ये सब भगवान के भक्तों के लिए ये सब बंधन नहीं है, काल कर्म का बंधन नहीं है। लगता है कि बंधन में है, लगता है कि दुखी है, लगता है कि फेवर है, लगता है मीरा दुखी है, पांडव दुखी है, लेकिन मीरा को पूछो बोलती है करना फकीरी और दिल जीरी, सदा मगर कोई दिन गादी कोई दिन तकिया कोई दिन बोलते सुना जी तुल्यार्थ दर्शिन नारायण परा सर्वे कुतस्तन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश तुल्यार्थ दर्शिन। भगवान के भक्तों के लिए तुल्य है, क्या तुल्य है, स्वर्ग अपवर्ग एंड नरक, नरक स्वर्ग एंड भगवान का धाम एक तुल्य है, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भावना में स्थित है, दिव्य स्तर पर स्थित है, इसलिए काल कर्म उनको कुछ नहीं करता, माया कुछ नहीं कर सकती। काल कर्म और माया इन तीनों का बंधन जीव पर डलता है, जीव पर लगता है। माया मैं आत्मा, मैं भौतिक जगत से परम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति मुझे कुछ नहीं कर सकती। माया भगवान की जीव को, श्री कृष्ण की जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है, माया शक्ति अंधकार में डालती है। और पहला अंधकार क्या है, मैं शरीर हूं, दूसरा अंधकार क्या है, मेरे शरीर के संबंधी मेरे हैं, तीसरा अंधकार क्या है, गली के गांव के मेरे हैं, देश के मेरे हैं, तो ये अंधकार में डालती है। और त्रिगुणात्मिका है ये माया शक्ति, त्रिगुणमयी माया, देवी ऐसा गुणमयी त्रिगुणमयी मम माया दुरत्य त्रिगुणमयी है। तो भगवान का भक्त त्रिगुणातीत होता है, जैसे हमने कल कहा था त्रिगुणातीत एवो त्रिमूर्ज मटेरियल नेचर तुल्य अवस्था या ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, दिव्य प्लेटफॉर्म, दिव्य स्तर, आध्यात्मिक स्तर, फोर्थ डिमेंशनल स्तर। तो माया त्रिगुणात्मिक है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है। पहला अंधकार हम शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ अहम ममत्व कराने वाली शक्ति है, और त्रिगुणात्मिका है, ते माया का बंधन, मेरा मेरा मेरा। और भक्त कहता है भगवान तेरा तेरा तेरा, जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, महाभावती और चित्रा सखी सुंदर श्याम के यहाँ, तो उनके मंदिर में लिखा है हे कृष्ण मैं तेरा, मैं तेरा, मतलब कि ये कृष्ण तू मेरा है और कृष्णा मैं तेरा, ये वाम भाव एंड दक्षिण भाव, हाँ दक्षिण भाव में तेरा चंद्रावली, हाँ राधा रानी तू मेरा है, चंद्रावली कहती है मैं तेरी हूँ, तो मदिया भाव एंड त्वदिया भाव, मदिया भाव। तो भगवान का भक्त इन तीनों से पर हो जाता है, काल कर्म और माया का प्रभाव से परे, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल, उनको बोलते हैं भक्तों को बोलते हैं शुद्ध भक्त, दिव्य भक्त। तो एक युधिष्ठिर महाराज को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो मैं मुझे जो दुख आ रहे हैं गत जन्मों का कर्म के मुझे ये भोगना पड़ता है। तो अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक उसे काल की क्रिया प्रक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। तो भक्तों को गत जन्मों का कर्म और उनका हिसाब किताब कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान भक्तों को गोद में लेके उनके आगे पीछे भक्तों के सामने भक्तों के मन में भक्तों के चेतना में भगवान के सिवाय कुछ होता नहीं, और जहाँ भगवान है उनके सामने काल कर्म माया का प्रभाव कुछ नहीं कर सकता। जैसे बड़ा मैग्नेट हो तो मैग्नेट का फील्ड हो, मैग्नेट फील्ड, तो उसमें अगर गोल नजदीक रखा आपने तो मैग्नेट का कोई प्रभाव गोल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर लोहा रखा तो लोहा को सारा मैग्नेट का प्रभाव, वो लोहा मैग्नेट बन जाएगा, वो अर्थात मैग्नेट माया काल कर्म और माया का प्रभाव मैग्नेट जैसा है। तो बद्ध जीव ये काल कर्म माया के प्रभाव में उनको बद्ध होना पड़ेगा, लेकिन भगवान के भक्त गोल्ड जैसे हैं, सोना जैसे, और वाकई में सुनहरी होते हैं भक्त, और वो सोना का प्रभाव मैग्नेट पे नहीं पड़ता, काल कर्म और माया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि युधिष्ठिर को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे ऊपर काल कर्म और माया का प्रभाव है, एक काल बहता है लेकिन हम उनसे लिप्त हैं, हम उनसे जैसे अंबशा जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त रहते परे रहता है, पानी उनको कोई असर नहीं कर सकता। तो ये युधिष्ठिर को समझना चाहिए, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के भक्तों को काल कर्म और माया कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा दिव्य स्तर पर भगवान के संग में भगवान के साथ रचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डोलते हैं। भगवान के भक्त सदैव संत को सदा दिवाली और आठे पहर आनंद, जो रियल संत साधु महंत भक्त डिवोटी हैं उनको सदैव दिवाली, सदैव उत्सव, एवरीडे जो उत्सव, मंगलारती से लेके संध्या आरती तक उत्सव उत्सव, मस्ती मस्ती, इंटॉक्सिकेशन, प्रीचिंग प्रचार हम जब करते हैं तो इंटॉक्सिकेशन, हम इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे नशा चढ़ा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का नशा, इसलिए मैं ये बोलता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, नशा है। भक्त हमेशा दिव्य नशा में रहते हैं। इसलिए मीरा कहती करना फकीरी भक्ति करना और दिलगिरी, और दुख में दुख कैसा, दिलगिरी में रहना दुख में रहना ये भक्तों का काम नहीं है। करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। भक्त हमेशा आनंद में दिव्य स्तर पर रहता है, आनंद के स्तर पर रहता है। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृत स्वाद, आनंद के स्तर पर रहते हैं, दिव्य आनंद के स्तर पर। इसलिए उनके लिए सुख दुख ठंडी गर्मी मान अपमान सब उनके लिए सब कुछ समान है। तो ये है आनंद का स्तर, और दिव्य स्तर पर भक्त रहते हैं। तो इसलिए काल कर्म और माया भगवान के शुद्ध भक्त को छू नहीं सकते, नजदीक नहीं आ सकते। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। धर्मराज को ही सोचना ही चाहिए कि मेरे गत जन्म के कर्म है। पांडवों को कोई कर्म नहीं था, दिव्य स्तर पर थे, लेकिन जस भगवान की लीलाओं को समझाने के लिए, सामान्य जनता को भगवान की लीलाओं की भ्रांति कराने के लिए पांडव लोग ऐसा लगता है कि वो दुखी है। भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है पांडव, वे कभी भी दुखी नहीं हो सकते। और अगर दुखी लगते हैं तो हमारी आंखों में तकलीफ है, उनकी आंखों में नहीं। जैसे मीरा कह रही है करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहा, कोई दिन गादी कोई दिन तक कोई दिन वॉय पे सोना चाहिए। तुल्य अर्थ दर्शिना नरक अपवर्ग स्वर्ग सु तुल्य अर्थ दर्शिना, उनके लिए स्वर्ग नरक और भगवान का धाम तुल्य एक एक है। क्योंकि चेतना एक हो गई, चेतना कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना हो गई, तो कृष्ण चेतना दिव्य स्तर पर ये सब भौतिक नहीं रहता। काल कर्म माया ये भौतिक है और दिव्य स्तर पर नहीं रहता, सब भौतिक दिव्य स्तर पर छूट जाता है। अचिंत खलु ये भावा, अचिंत खलु ये भावा, दिव्य और भौतिक ये दोनों कंप्लीटली अपोजिट है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। और भौतिक से दिव्य चीज हम समझ नहीं सकते, इसलिए हमारी चेतना दिव्य हो तभी हम भगवान को समझ सकते हैं जो दिव्य है, शास्त्रों को समझ सकते हैं जो दिव्य है, शुद्ध भक्तों को समझ सकते हैं जो दिव्य है। अचिंत खलु ये भावा, दिव्य चीज को समझने के लिए दिव्य बनना पड़ेगा, ब्रह्म बन के ब्रह्म की उपासना करनी पड़ेगी, हमें ब्रह्म के स्टेज पर आना पड़ेगा। ब्रह्म का स्टेज मतलब दिव्य स्तर, आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, दैट प्लेटफॉर्म। ब्रह्म बन के, ब्रह्म होके, ब्रह्म परम ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना भक्ति। इसलिए भगवद गीता वहां रुकती है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती कटकांक्ष सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम शुद्ध भक्ति। कौन लभता है, कौन पाता है, जो ब्रह्म के स्टेज पर, ब्रह्म ब्रह्मांड रियलाइज आध्यात्मिक स्तर पर जो है वो पराभक्ति शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक भक्ति कर सकता है। तो ब्रह्म रूप होके परब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, ये शुद्ध भक्ति है। ब्रह्म बन के ब्रह्म रूप स्तर पर, ब्रह्म ब्रह्म आध्यात्मिक स्तर पर परम ब्रह्म श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है, भगवद गीता का सिद्धांत है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत पराभक्ति लभते पराम भक्ति, तो ब्रह्म के स्टेज पर शुद्ध भक्ति हो सकती है। इसलिए ब्रह्म रूप बन के पर ब्रह्म की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना, श्री कृष्ण की भक्ति, तो ये सिद्धांत है। तो काल कर्म माया बतलों को छू नहीं सकता, कई शास्त्र में लिखा है। और क्योंकि भक्त दिव्य स्तर पर है, युधिष्ठिर महाराज भी दिव्य स्तर पर है, पांडव भी दिव्य स्तर पर है, उनको जो भी दुख हमें दिखाई दे रहा है वो उनका आनंद है। वो कुंती अगर आनंद के स्तर पर न होती तो इन्हें कहती कि विपद भवतु तत्शाश्वता तत्र तत्र जगत गुरु भविता दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये भगवान हमारे ऊपर विपदा आती रहे, क्योंकि विपदा में आप भागे हुए आते हो, भागते भागते आते हो, अब भाग के आते हो, लेकिन जब आप सुखी है तो द्वारिका चले जाते हो। तो इसलिए हमारे ऊपर दुख ही आता रहे। तो ये दिव्य स्तर पर बोल रही है कुन कुंती। तो दिव्य स्तर पर भक्त को काल कर्म माया का कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म होके पर ब्रह्म की उपासना में सदैव रत रहते हैं भक्त। इसलिए काल कर्म माया का कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ता। तो यह है आज का श्लोक। कोई सवाल जवाब शंका समाधान? हाँ,
तो माया के जो तीन गुण है वो हमारे ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण होते हैं, और इनका शुद्ध भक्त के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता।
यस,
बट वो तब होता है जब वो भक्त ब्रह्म स्टेज पे होता है।
यस,
तो और ये जो ब्रह्म स्टेज होता है इसको समझने के लिए उसे शुद्ध भक्त बनना होता है पहले भगवान का।
यस, साइमल्टेनियसली शुद्ध भक्त और ब्रह्म का स्टेज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट होता है। शुद्ध भक्ति एंड दिव्य भक्ति एंड ब्रह्म स्टेज, ये साइमल्टेनियसली। शुद्ध भक्ति तभी हो सकती है जब हम ब्रह्म स्टेज पर हैं, और ब्रह्म स्टेज तभी हो सकता है जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं। जो भगवद गीता में भगवान 16 अध्याय में कहते हैं अंत में कि यो माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समय इत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सगुणान समय इत्येतान, तीनों गुणों को लांग के ब्रह्म भाव को वो हासिल करता है, ब्रह्म भाव को वो पामता है। तो लेकिन अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार मतलब प्रोस्टिट्यूशन वेश्या गिरी, अव्यभिचार मीन्स एकांतिक भक्त, अनन्य भक्त, उनको अव्यभिचारिणी भक्ति है कहते हैं। अनन्य चिंतन मामेकम, मेरे एक के शरण में आ, एक न मनसा भगव तस्माद एक न मनसा तस्मान एक न मनसा भगवान शाश्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्य देव पूज्य नित्यदा एक न मनसा। दिस इज शुद्ध भक्ति एक न मनसा। तो दैट इज अव्यभिचारिणी, अयो माम च अव्यभिचारिण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समय इतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म का ब्रह्म की स्थिति में आता है। बुद्ध या विशुद्ध या युक्तो द्रुत्यात्मानं नियम्यच्च शब्दादि विषया त्यक्त्वा राग देश विदुष्य च विविक्त सेवी लघुवासी यत्वाक् कायमानसः। विविक्त सेवी लघुवासी यत्वाक् कायमानसः ब्रह्म भूयाय कल्पते। यत्वाक् कायमानसः राग देश विदुष्य च, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। दिस इज ब्रह्म स्टेज। ब्रह्म स्टेज का अर्थ है टोटली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, नो मटेरियल कंसिडरेशन, नो मटेरियल थिंकिंग, नो मटेरियल कंसेप्शन, टोटल स्पिरिचुअल कंसेप्शन। तो ये ब्रह्म का स्टेज का मतलब है आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल स्तर, शुद्ध सात्विक स्तर, तुरिया अवस्था, तीन गुणों से पर, ये सब एक ही बात है। तो आपका सवाल क्या था?
महाराज मेरे को बस वही समझ नहीं आया था, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा समझ में नहीं आया था बस
क्या
कि तीन गुण माया के एंड देन उसके ऊपर ब्रह्म स्टेज पे उसको समझना होगा, बट उससे पहले उसको माया से जब तक वो थोड़ा सा परे नहीं होगा तब तक वो काल से ऊपर नहीं उठ सकता
नहीं।
तो यही वाली चीज थोड़ी सी समझ नहीं आई थी अभी आगे यस महाराज।
एनी अदर क्वेश्चन?
महाराज जी अभी आपने बोला वो भाव होता है दक्षिण दक्षिण भाग का भाव और वाम भाग का, राधा रानी का भाव कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, तो इन दोनों में कौन सा भाव श्रेष्ठ है और हमें हमारा भाव कैसा होना चाहिए?
सवाल है वाम भाव हमारे लिए हमारे उपास्य है कि दक्षिण भाव, तो हम सब मंजरिया का भाव अंगीकार करना चाहिए हमें। मंजरी किसे कहते हैं कि मंजरी की परिभाषा है वो असम स्नेहा होती है, मंजरी इज असम स्नेहा। तो कोई ऑर्डिनरी दृष्टि में लोगों को लगेगा कि असम स्नेहा वो, तो असम स्नेहा का अर्थ है राधा रानी को थोड़ा सा कृष्ण से ज्यादा प्यार करते हैं मंजरिया, अर्थात मर्जिया मंजरिया राधा रानी की सेविका है, राधा रानी ने जैसे पलक उठाई वैसे कर लिया, राधा रानी जो भी कहेगी, राधा रानी ललिता सखी, ललिता राधा रानी ललिता सखी राधा रानी के इशारे चलती है, उनके इशारे चलती है, इसलिए हम ललिता सखी की ये अनुगमन करते हैं और ललिता सखी का अनुगमन करते हैं रूप मंजरी, रूप मंजरी रूप गोस्वामी का सिद्ध देह सिद्ध स्वरूप है रूप मंजरी, तो हमें हम रूपानुग है रूपानुग, और रूप गोस्वामी मंजरी है, सद गोस्वामी मंजरिया है, हम हमें अनुगम रूपानुग अनुग रूपानुग तद अनुरागी जना अनुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम, हमें तद अनुरागी मतलब रूप गोस्वामी जैसे नित्य सिद्ध परिकर भक्त उनका अनुगमन, अर्थात रागात्मिक भक्त का अनुगमन, चलो रूप गोस्वामी रागात्मिक भक्त है तो रागात्मिक भक्त रूप गोस्वामी का सिद्ध स्वरूप है रूप मंजरी, और रूप मंजरी के हम अनुगमन करते हैं मंजरी भाव से, गोपी भाव मंजरी भाव, मंजरी भाव गोपी भाव से हमारा थोड़ा सा थोड़ा अलग है, क्यों कि असम स्नेहा है, असम स्नेह का मतलब राधा रानी को हम कृष्ण से थोड़ा ज्यादा प्रेम करते हैं, तो इसको बोलते हैं असम स्नेहा, तो मंजरी इनको कहते हैं, तो हमारा वाम भाव है राधा रानी का भाव है, कृष्ण मेरा है अर्थात कृष्ण मेरी प्रॉपर्टी है, कृष्ण मैं एक्सक्लूसिवली कृष्ण को ओन करता हूँ, कृष्ण इज माय एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी मोनोपोली ओवर कृष्ण, आई से सिट डाउन आई से स्टैंड अप कृष्ण हैज टू स्टैंड अप, वी कैन नॉट मंजरी डजंट डू दैट, बट राधा रानी की बात है, राधा रानी इज वामा। एनीवे ये भी स्पर्धा जो राधा रानी और चंद्रावली राइवल है एक दूसरे के प्रति स्पर्धी है, लेकिन वो स्पर्धा है भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए, और जब मतलब कि एक दूसरे के दुश्मन लगते हुए भी नहीं है, आध्यात्मिक जगत में कोई कोई का दुश्मन नहीं होता, लेकिन भाव जगाने के लिए रस का उत्कर्ष करने के लिए कैटलिस्ट उनको व्यभिचारी भाव और ये सारे भाव आगे हम पढ़ेंगे, व्यभिचारी भाव तो कैटलिस्ट कैटलिस्ट करने के लिए अथवा तो उत्तेजन उत्तेजित भावों को उत्तेजित करने के लिए ये सब कैंप है। जैसे ये दुनिया में जब दोनों आए थे राधा रानी चंद्रावली और सारी गोपियां रास डांस में भगवान के साथ करने के लिए आई, राइट विंग गोपी लेफ्ट विंग गोपी वामा दक्षिण, तो जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो रु राजन कृष्ण दर्शन भावना समथिंग. तो सब गोपियां राइट विंग लेफ्ट विंग रोती हुई एक बन गई, क्योंकि कृष्ण जिनके लिए स्पर्धा है वो तो गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए. तो दोनों कैंप एक बन के भगवान के लिए रोते हैं और गाते हैं, और भाव सारा दोनों का भाव एक है कि कृष्णा चले गए, कृष्णा आए.
महाराज जी कब है जब कृष्णा वृंदावन से जाते हैं, वैसे यहाँ से
रासलीला में जब वो अंतर्ध्यान हो गए, गोपियों को नीच जन स्मय वंश न स्मिता, अपने निज जनों का अभिमान वो काटते हैं भगवान, इसलिए लगता है कि वो दुखी है. लेकिन भगवान अभिमान काटना चाहते हैं इसलिए दुखी हो गई. लेकिन उनको दुख नहीं है जो भौतिक स्तर पर दुख होता है, ये आध्यात्मिक दुख है विरह का.
तो कथा को विराम देंगे.
हरे कृष्ण.